السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمید ہے آپ سب نے اپنے رمضان مبارک کے ٹارگٹس اب تک سیٹ کر لی ہوں گے اور ان کے لیے کوشش میں لگے ہوں گے کہ یہ تمام گولز جو آپ چاہتے ہیں کہ پورے ہو جائیں ان کے لیے تگ و دو میں لگے ہوں گے. اگر انسان کی زندگی میں ٹارگٹ سیٹ نہ ہو تو کچھ تو آپ کریں گے مگر بہت اعلیٰ منزلیں پا نہیں سکیں گے. آپ دیکھیں اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مثلاً میں نے 2 قرآن پاک مکمل کرنے اس مہینے میں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے پہلے 15 دن میں میں 1 قرآن ختم کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد اگلے 14 یا 15 دن میں دوسرا قرآن. اس کا مطلب ایک دن میں میں 2 پارے پڑھوں گی صبح اور رات، یا اس طرح ہی جو بھی آپ کے اور کوئی ٹارگٹ ہوں. مثال کے طور پہ یہ کہ میں نے 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اس مہینے میں، تو روزانہ مجھے کتنا پڑھنا ہوگا؟ تقریباً 350 مرتبہ. اس طرح اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے روزانہ تحیت الوضو پڑھنا ہے، تو پھر آپ وہ اس کے لیے تمام کریں گے. اشراق پڑھنی ہے روزانہ تو اس کے لیے کریں گے. اگر میں نے استغفار کرنی ہے ایک دن میں 100 مرتبہ، تو میں کس ٹائم پہ کروں گی؟ کون سا ٹائم ہے جو میرا استغفار کا ہے، کون سا ٹائم ہے جو میرا درود شریف پڑھنے کا ہے؟ اور رات تک آپ پھر چیک کریں گے کہ میرا آج کا ٹارگٹ پورا ہو سکا یا نہیں. پھر اگر وہ نہیں پورا ہو سکا ہوگا تو آپ چاہے رات کو لیٹ سوئیں گے لیکن اپنا ٹارگٹ پورا کر کے سوئیں گے. چاہے آپ کو فون کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، آج خبریں نہیں دیکھنی ہوں گی، یا آج آپ نے کوئی اور جو ضروری آپ روزانہ کام کرتے ہیں، مثلا کسی سے بات کرنا یا کہیں جانا، تو وہ چھوڑ کے آج آپ اپنے ٹارگٹ کے مکمل کرنے کے لیے وقت نکالیں گے. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے سامنے ایک سیٹ گول ہو. اگر آپ اوپن اینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو کہ چلو جتنا ہو گیا ہو گیا، نہ ابھی ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ زیادہ آپ اس مہینے میں حاصل نہیں کر پائیں گے اور بہت ساری چیزوں کو ہمیں پیچھے کرنا پڑتا ہے جب ہم نے کوئی اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے ہوں. مثلا ایک بچے کا اگر امتحان ہو تو وہ بھی ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ میں نے اتنا اتنا پڑھنا ہے، اتنے چیپٹرز میں اتنے دن میں ختم کروں گا، تب میرا سلیبس ختم ہوگا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ٹارگٹ ہی سیٹ نہ کریں، بس چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک قرآن مکمل ہوا تو ہوا، نہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے لیے خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہاں پر کوئی اور آ کے نہیں ہمیں کچھ بتائے گا. اب ہم بچے نہیں رہ گئے کہ ماں باپ ڈنڈا پکڑ کے ہم سے کچھ کروا لیں. اب ہمیں خود اپنے لیے سختی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا، خود اپنے لیے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے. یقین جانیے کوئی بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ہم خود اپنے آپ کو سنوارنا نہ چاہیں. میں یہاں کتنے بھی لیکچرز دے دوں، آپ کتنے بھی دروس اور سن لیں، کچھ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنے لیے خود فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے خود کو بہتر کرنا ہے، میں نے خود کو سنوارنا ہے، میں نے کم از کم ایک سٹیپ اور آگے جانا ہے اس رمضان میں. میں جہاں کھڑی تھی جس سے میں نے رمضان سٹارٹ کیا اسی کے اوپر مکمل نہیں کرنا. میں نے رمضان کے ٹارگٹس بنانے ہیں और मैंने उनके लिए दौड़ लगानी है। और दौड़ लगाने वाला जो होता है, कभी आपने उनको देखा है, वो कभी भी अपने साथ बोझ उठा के नहीं दौड़ते, वो हल्का फुल्का दौड़ते हैं। उन्होंने पानी की बोतल भी पकड़ी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि वो भी एक बोझ लगती है उनको, हालांकि उनको बार बार पानी की जरूरत रहती है, लेकिन वो बिल्कुल खाली हाथ के साथ दौड़ रहे होते। हमें भी अगर दौड़ लगानी है ना इस महीने में, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को पीछे करना होगा, बहुत सारी चीजों को साइड पे रखना होगा। ये बोझ है हमारे, इनके साथ दौड़ नहीं लग सकेगी। हाँ, चल सकेंगे आप, लेकिन अगर दौड़ना चाहती है तो टीवी को पीछे कर दें, फोन को पीछे कर दें, और अपनी बहुत सारी मसरूफियात जो है उनको पीछे कर दीजिए। गपशप करना, हंसना बोलना, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, सोशल मीडिया पर घंटों लगा देना, किसी को जवाब देना, किसी के साथ सवाल करने, किचन में बहुत ज्यादा वक्त लगा देना, ये सब बोझ है हमारे। इस महीने में इनको हल्का कीजिए। अगर इफ्तारी कम भी बन गई, 4 की जगह 1 डिश बन गई, तो कोई हर्ज नहीं होगा। सारा साल खाना पीना चलता ही तो रहता है। रमजान कोई दावतों का, खाने पीने का और कोई फीस्टिंग का महीना तो नहीं है, लिहाजा ये बोझ है, इनको उतारिए। अगर 2 घंटे मेरे किचन में लग जाते हैं तो उनको कम कीजिए, 1 घंटा कर ले। इसी तरह अगर मैं फोन के ऊपर, अपने फोनों पे चेक करें कि कितने घंटे मैं फोन पे रहती हूँ, आप उसको मिनिमाइज करें। बहुत जरूरी जरूरी चीजें सिर्फ उस पे करें। शेयरिंग भी बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि तो किसी और का टाइम जाया होगा। सिर्फ जरूरी बात को शेयर कीजिए। तो लिहाजा ये सारे बोझ उतारेंगे तो दौड़ सकेंगे, वरना रमजान खत्म हो जाएगा, हम देखते ही रह जाएंगे। लोगों ने बहुत कुछ कमाइयां कर ली होंगी और हम खाली हाथ खड़े होंगे। असल बात ये, यहाँ पर नजर नहीं आता ना कि किसने कितना कमा लिया। अगर ये दुनिया के दौलतों की तरह चीज होती कि सामने नजर आ रहा होता, तो सब दौड़ते, सब चीजें पीछे करके दौड़ते। आपने देखा होगा कि अकाउंटेंट्स वगैरह जो होते हैं, इनका एक टैक्स सीजन होता है। जब उनका वो सीजन आता है तो कहते हैं, आजकल हमसे बात भी ना करें, हम बहुत मसरूफ हैं, क्योंकि आजकल हमारा सीजन चल रहा है। ये हमारा भी तो नेकियों का सीजन है, फिर हम क्यों अपने वक्त को जाया किए चले जा रहे हैं? अगर एक दिन सही गुजरता है तो दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं, फिर उन्हीं चीजों में लग जाते हैं, फिर एक दिन कुछ थोड़ा सा खुद को संवारते हैं, फिर उसके बाद यही चीजें। क्या बात है कि अगर हम सियासत को कुछ अरसे के लिए बंद कर दें देखना, ड्रामे कुछ अरसे के लिए बंद कर दें, फेसबुक वगैरह को देखना बंद कर दें, कोई हर्ज नहीं होगा। जो हमने सीखना था वो पहले सीख चुके हैं। अब वक्त है सिर्फ कुरान का और दुआओं का और अल्लाह ताला के जिक्र का। इस महीने में हम सब चाहते हैं कि हमारी निजात हो जाए आग से, जहन्नुम से, गुनाहों से, अल्लाह ताला की नाराजगी से। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि ये निजात हम पा सकें? अब ये बात नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतर कौन हमें बता सकता है? लिहाजा करोड़ों दरूदो सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर आपके सहाबा पर, कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में ये सवालात पूछ लिए जो आज हमें काम आने वाले हैं। उकबा बिन आमिर फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, निजात कैसे हासिल हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम बताए इसके जवाब में। क्यों ना हम भी वो 3 काम करके और निजात पा लें? और काम बहुत आसान है, यकीन जाने हमारा दीन इतना प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो हमारी ताकत से बाहर हो। जिसको हम कहें ये तो नामुमकिन है करना, इतनी आसान आसान चीजें हैं, लेकिन देखें कैसी बात है, क्या ये आसान आसान चीजें हमारे रास्तों में बिखरी पड़ी हैं, बेशुमार हैं, लेकिन हम उनसे फायदा ही उठाना नहीं चाहते। जैसे अभी मैंने तहियतुल वुजू की बात की ना, तो अब हम सबको पता है इसकी फजीलत कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से पूछा था ना, मुझे अपना वो अमल बताओ जिसपे इस्लाम लाने के बाद तुमको सबसे ज्यादा अजर व सवाब की उम्मीद है, क्योंकि मैंने आज रात अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, मैं और तो कुछ नहीं मगर ये होता है कि रात या दिन में जिस वक्त भी वुजू करता हूँ, उस वुजू से जो नमाज अल्लाह ने मेरे लिए लिखी होती है वो मैं पढ़ लेता हूँ। बस यही वो अमल है कि इस्लाम लाने के बाद मैं इस पर सबसे ज्यादा अजर व सवाब की उम्मीद रखता हूँ, यानी हर वुजू के बाद वुजू के नफल पढ़ लेना। अब देखिए कहने को ये बड़ा आसान काम है, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। मैंने आपको वुजू के बाद की दुआ भी सिखाई कि वो कलिमात जिनसे जन्नत के आठों दरवाजे खुल सकते, फिर इसी तरह वो भी बताया कि आपको अगर आप वुजू करके रात को सोएंगे तो उस पे कितना आपको अजर मिल सकता है, कि आपकी दुआ कबूल हो सकती है, एक फरिश्ता आपके साथ बाकायदा रात गुजारता है, जब आप बावजू होके रात को सोते हैं तो एक फरिश्ता आपके साथ रात गुजारता है। और हदीस में आता है कि जब इंसान उठता है तो वो फरिश्ता कहता है अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे, फरिश्ता दुआ करता है अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अब्दी फुलान, अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे। सुभान अल्लाह, यानी कितनी बड़ी बात है कि फरिश्ता हमारे लिए दुआ करें। हम लोगों की दुआओं के मुंतजर रहते हैं और दरख्वास्त करते हैं आप हमारे लिए दुआ करिएगा। तो कितने सारे अमल हैं जो हमारे लिए बहुत सारी नेकियां समेट के ला सकते हैं, बस तवज्जो की जरूरत है, बस इसको सीरियस लेने की जरूरत है। छोटे छोटे काम है, इसी तरह ये जो निजात का नुस्खा है ना, ये भी तीन छोटे छोटे काम ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो देखते हैं कि क्या बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहली चीज ये बताई, अपनी जुबान पे काबू रखो। जुबान पे काबू रखना वैसे भी जरूरी है, लेकिन रोजे में तो इतना जरूरी है कि अगर इसको काबू में नहीं रखा तो जैसे हदीस से पता चलता है कि फिर अल्लाह ताला को ऐसे बंदे के रोजे की, रोजा नहीं कहा गया, ऐसे बंदे के भूखे प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं, यानी उसका रोजा है ही नहीं है, वो भूख प्यास है। तो रोजा सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम नहीं, रोजा जुबान के गलत इस्तेमाल से परहेज का नाम भी है, कि ये जुबान ही है ना जो झूठ बोलती है, गीबत करती है, शेखियां मारती है, तकब्बुर की बातें करती है, लानत मलामत करती है, दिखावे करती है, ताना देती है, तंज करती है, गालियां देती है, किसी का मजाक उड़ाती है, लगाई बुझाई करती है, बुरा भला कहती है, ये सारे गुनाह एक इस जुबान का काम है करने के। अगर ये काबू में आ गई तो सोच लें कितने सारे गुनाहों से हम बच सकते। मैंने आपको खामोशी की फजीलत बताई थी ना, कि इब्ने हजम ने फरमाया था कि मैंने खामोश रहने वाले को कभी देखा नहीं कि वो हलाक हो गया हो। हाँ, जुबान जो चलाने वाले हैं वो अपनी जुबान की वजह से हलाक हो जाते हैं, तो हम हलाकत से बच सकते हैं। दूसरे क्या फरमाया, अपने घर में रहो। इंसान सलामत रहता है जब घर में रहता है, खास तौर पे औरतें, बाहर निकलेंगी तो शैतान ताकता है उनको, बनाओ सिंगार की कहीं नुमाइश कर बैठेंगी, कहीं मर्दों की नजरों के भटकने का सबब बन जाएंगी, कहीं खुद किसी फितने में पड़ सकती हैं, कहीं वक्त को जाया कर देंगी, फिर कहीं जाएंगी तो किसी मजलिस में बैठेंगे, फिर जुबान के गुनाहों को समेट ले आएंगी। लिहाजा कम से कम घर से निकलें, कोई नेकी का काम ही है तो उसके लिए निकलें, वरना नहीं, खास तौर पर रमजान में। और बाज जगह हमारा फिजिकली जाना नहीं होता, आजकल तो वर्चुअल जाना होता है। हम घर में बैठे हैं लेकिन सारी दुनिया के साथ राबते में फोन के जरिए। लिहाजा इसको कम कीजिए। और तीसरा काम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अहम, फरमाया अपने गुनाहों पर रो, अपने गुनाहों पर रो। इससे क्या होगा, ना सिर्फ गुनाह मिटेंगे, दिल भी साफ होगा, अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होगा, आजजी भी पैदा होगी, दर्जात की बुलंदी भी होगी। देखें ये आंसू जो है ना, ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़े ही कीमती हैं। इनका जो सवाब है वो फरिश्ते लिख नहीं सकते, इनको एज इट इज ही लिख लेते। ये तो उस दिन जब तुलेंगे मीजान में तो पता चलेगा कितने वजनी थे। ये आंसू जो अल्लाह ताला की याद में निकले, आपको पता है ना कि कयामत के दिन जब सूरज बहुत करीब होगा, लोग अपने पसीनों में शराबोर हो रहे होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा। उनमें एक वो भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसके आंसू निकल आए। तो ये तो अल्लाह ताला के अर्श को, के साये को पाने का एक जरिया है। फिर ये आंसू जो हैं, आज अगर बहाए गए तो ये गुनाहों के समंदरों को बुझा देंगे, गुनाहों के आग को बुझा देंगे। और कयामत के दिन जहन्नमी इतने आंसू बहाएंगे, इतने आंसू बहाएंगे कि कश्तियां चलाई जाए तो चल जाए, मगर उनके आंसू से उनका एक गुनाह भी नहीं मिटेगा। ये आंसू ऐसे हैं जो इतने कीमती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जो आंसू बहाता है अपने, चाहे अपने गुनाहों को सोच के, चाहे अल्लाह ताला को याद करके, तो जिस शख्स की आंखों से, अल्लाह के खौफ से आंखों आंसू टपक पड़े, उसका जहन्नुम में जाना ऐसे महाल है जैसे दूध का थन में वापस जाना। आप जानवर के दूध निकाल लें तो दोबारा तो नहीं डाल सकते, इतना महाल है, नामुमकिन है ऐसे बंदे के लिए कि वो जहन्नुम में चला जाए। तो ये आंसू तो बड़े कीमती हैं, और अल्लाह ताला के सामने रोने से तो कभी भी ना शर्मा। इंसान अपने गमों पे तो बहुत रोता है, परेशानियों पे बहुत रोता है, फिल्में ड्रामे देख के उनके सीन्स पे बड़ा रोता है, लेकिन कभी अपने गुनाहों पे भी तो रोए। और इसको बदबख्ती समझे अगर आंखों से आंसू नहीं टपकता, ये तो तकब्बुर की अलामत है, या बेपरवाही की अलामत है, या दिल की सख्ती की अलामत है। इसका मतलब दिल सख्त हो चुका है अगर आंसू नहीं आता। और खुशकिस्मती है अगर आंसू बह पड़े अपने गुनाहों को याद कर, अल्लाह के आगे खड़े होने के ख्याल से। लिहाजा वो वक्त निकालें जो तन्हाई का हो, जिसमें आप हो, आपका रब हो, और इस बेहतरीन वक्त, ये आखिरी तहाई रात है, जिसमें आप बैठे और अपनी जिंदगी को याद कीजिए, पिछली जिंदगी में क्या क्या कर चुके, ये भी मैंने गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, और फिर अल्लाह ताला के आगे मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे उसके आगे पेश होना है, और मेरा वक्त करीब आता जा रहा है। जो ये घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, ये मेरा और आपके, अल्लाह ताला के हाजिरी के वक्त को करीब ला रही हैं। लोग अपनी सालगिरह पे बड़े खुश होते हैं, वो कितने भोले हैं ये नहीं सोचते कि असल में वक्त और करीब आ रहा है अल्लाह ताला से मुलाकात का। और ये ना हो कि उस दिन फिर शर्मिंदगी उठानी पड़े। लिहाजा इस वक्त में जो आपको जिंदगी के लम्हात मिले हैं, इनमें अपने आंसुओं से अपने गुनाहों को बख्शवा लीजिए। हदीस कुदसी है तिरमजी में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह जमीन को भर दें और जमीन की वसतों को भर दें और अगर ऊपर उठते चले जाएं और पूरे खला को भी भर दें और खला से निकल के आसमान के किनारों तक चले जाएं, सारी कायनात तेरे गुनाहों से भर कर आसमान के किनारे तेरे गुनाह छूने लगे, फिर तुझे निदामत आ जाए और तेरे आंसू निकल आए और तू तौबा के लिए हाथ उठाए, तो गफरतु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे ही गुनाहों को माफ कर दूंगा और मुझे कुछ भी परवाह नहीं होगी। जब इंसान अल्लाह ताला के आगे आंसू बहाता है ना, रोता है, अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है इन आंसू का। इंसानों के सामने आप आंसू बहाने तो आप बेवकत हो जाते हैं, वो आपको कुछ नहीं समझते, कभी कोई मजाक भी उड़ा देता है, कभी कोई बेपरवाही से मुंह फेर के भी चला जाता है कि रोते रो पड़े हुए, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। वो इन आंसुओं को हीरे मोतियों से भी ज्यादा वजनी उस दिन तोलेगा। लिहाजा ये बड़े कीमती हैं, एक एक आंसू। तो आंसू बहे नहीं भी, अगर इतना सा भी आंसू आ गया ना जिससे आंखों के किनारे भीग जाए, तो अल्लाह ताला इस पे भी माफ कर देता। इतना सा भी आंसू आ गया ना जितना मक्खी का सर है, इतना सा भी टपका भी नहीं है, आंख में ही है, लेकिन ये एहसास हो गया कि मैं खताकार हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं अल्लाह का मुजरिम हूं, तो इस पे ही अल्लाह ताला माफ फरमा देता कि इंसान को निदामत आ गई, उसको शर्म आ गई, उसको हया आ गई कि मुझे करना नहीं चाहिए था वो सब जो मैंने आज तक किया, अल्लाह मैं तो तेरा हक नहीं अदा कर सका। तो लिहाजा तीन काम क्या करने हैं, जुबान पे काबू, अपने घर में रहने की कोशिश करें, बाहर बहुत फितना है, इतना बाहर जाएंगे किसी फितने में ही पड़ेंगे, और तीसरी चीज आंसू बहाना। अल्लाह ताला हमें भी निजात अता फरमाए आखरत की सख्तियों से। आज की जो दुआ है वो भी इसी सिलसिले की दुआ है कि इंसान अल्लाह ताला से वो चीज मांग ले जो उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, और वो है जहन्नुम से आजादी और जन्नत में दाखला। क्योंकि असल में वो ही कामयाब है जो जहन्नुम से आजादी पाके जन्नत में दाखिल। बाज लोग जहन्नुम से हो के जन्नत में जाएंगे, लेकिन असल कामयाब वो है कि जहन्नुम को देखे भी ना, जहन्नुम पे से बिजली किसी तेजी से गुजर जाए। तो अपने लिए ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से आजादी दे दे और जन्नत में दाखिल कर दे। इसके लिए एक बड़ी प्यारी हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे जो नमाज पढ़ रहा था। आपने उससे पूछा, तुमने क्या दुआ की है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कोई बेचारा होगा ऐसे जो कि सादा सा बंदा था। उसने कहा, मुझे आपकी तरह खूबसूरत दुआ तो नहीं करनी आती, और जैसे मुआज दुआ करते हैं मुझे वैसी भी नहीं आती, बस मैं तो ये कह देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत वा अऊज़ुबिका मिनन नार, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और मुझे अपनी पनाह में ले ले जहन्नुम की आग से, तो बस मुझे इतना ही आता है। जैसे हम भी अक्सर कहते हैं ना कि हमें तो दुआ मांगनी नहीं आती, हम क्या करें, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी दुआओं की जरूरत नहीं। अगर आपको दुआ नहीं भी मांगनी आती, जिस तरह से भी मांगनी आती वैसे ही मांग ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते क्या फरमाया? आपने फरमाया कि इसी दुआ के गिर्द तो मेरी भी और मुआज की भी दुआएं घूमती हैं। यही तो दुआ है, यानी जो हम सारी ही दुआएं करते हैं ना, वो इसी दुआ के गिर्द तो घूमती हैं कि जन्नत का सवाल और जहन्नुम से निजात। देखिए ना, हजरत अली ने फरमाया, जितना भी तुम अल्लाह की अजमत बयान कर लो, अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा अजीम है। और जितना भी तुम जहन्नुम के बारे में जान लो, जहन्नुम उससे कहीं ज्यादा हौलनाक है। और जितना भी तुम जन्नत के बारे में जान लो, जन्नत उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। लिहाजा हमें तो जितना भी पता चल जाए, जहन्नुम उससे कहीं ज्यादा खौफनाक चीज है और जन्नत उससे कहीं ज्यादा हसीन चीज है। तो हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत यही है। और आजकल तो हर रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से लोगों को आजाद कर रहा है, जहन्नुम से आजादी मिल रही है लोगों को हर रात, सुभान अल्लाह। तो कहीं हमारा नाम भी उसमें आ जाए तो हमारी फिर बड़ी खुशकिस्मती है, बस फिर हम कामयाब होगा। क्योंकि इंसान भी किसी इंसान को अगर आजाद कर देता है तो दोबारा उसको पकड़ता नहीं। एक मालिक गुलाम को आजाद कर देना तो दोबारा उसको गुलाम नहीं बनाता। तो अल्लाह ताला जिसको जहन्नुम से आजाद कर दे, अल्लाह ताला दोबारा उसको फिर जहन्नुम में नहीं डालेगा। तो ये दुआ कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा कोई आती है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो वो कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक जन्नतुल फिरदौस, वो कर ले। यानी ये सारी दुआएं आग से निजात की और जन्नत में दाखले की। इबादुर रहमान की अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी सिफत फरमाई है कि वो दुआएं करते हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर कर दे, फेर दे हमसे। ये अल्लाह के प्यारे बंदे हैं जिनकी अल्लाह ताला ने ये दुआ बताई कि ये दुआएं करते हैं वो। उनको इतनी परेशानी रहती है, अल्लाह हमें कभी ऐसे परेशानी होती है कि अगर हम जहन्नम में 1 सेकेंड के लिए भी चले गए तो हमारा क्या होगा। कभी ये परेशानी ऐसे लाहक होती है जैसे फकरों फाके की होती है, जैसे कोविड हो जाने की होती है, अल्लाह माफ करे, जैसे किसी बीमारी से डर की होती है कि हाँ ये बीमारी ना मुझे लग जाए, भाई मैं ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, कोई मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इन चीजों से हम कितना डरते हैं, इससे कहीं ज्यादा हमें इस चीज से डरना है कि अल्लाह कहीं जहन्नुम में एक पल के लिए भी हम ना चले जाए। और ना सिर्फ अपने लिए मांगनी है ये दुआएं, अपने सब प्यारों के लिए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मांगनी। इसी तरह आज का जो जिक्र है वो सबसे अफजल जिक्र, सबसे अफजल जिक्र, के ये भी ऐसा जिक्र है कि अगर ये हमने कह दिया ना इस दुनिया से जाते वक्त, तो बस फिर यकीनी तौर पे जन्नत मिल जाएगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि जिसका आखिरी कलाम ये होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसको ये नहीं आता, बताएं किसको ये नहीं आता, सबको आता है। ये तो हमारी बुनियाद है, लेकिन फिर भी कितनी कमी है ये कहने की, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर उधर की बातें सारा दिन होती रहती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ही मुंह से नहीं निकलता। तो ये कलिमा उसी का आखिरी कलिमा बन सकता है जो अपनी जिंदगी में इसको बार बार दोहराता रहा, जो कहता रहा, तो उसको उस वक्त भी फिर याद आ जाएगा। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में ये कभी कहा कभी नहीं कहा, हर एक को कलमा नसीब नहीं होता, हर मुसलमान को नहीं होता। ये ना समझे कि हम मुसलमान हैं तो हमारे जुबान पे खुद ही जारी हो जाए। इसके लिए दुआएं भी करें और इसकी बहुत प्रैक्टिस भी करें। अल्लाह ताला से ये मांगे, अल्लाह ताला मेरा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बना देना। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और इस कलमे को ही अल्लाह ताला हमारी निजात का बायस बना दे और हमारा आखिरी कलमा बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
لا إله إلا الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني 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 أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.